सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोच विचार। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ने लगे हैं जिसकी मेरा ख्याल अशद ज़रूरत थी और अभी तक हमने किया नहीं, तो इसकी हम माजरत चाहते हैं। बट ये सब्जेक्ट इस वक्त मेरा ख्याल दुनिया का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और ये एक सब्जेक्ट है जिसने हम सबको हैरान और परेशान कर दिया है। मेरा ख्याल आप पहचान गएंगे, ये सब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है दोबारा आपको इंट्रोड्यूस करते हुए हमारे दोस्त आदिल नजम के साथ। आदिल नजम साहब तो मेरा ख्याल किसी तारुफ का के मोहताज नहीं है, ये सब इनको जानते हैं। ये बड़े होनहार एकेडमिक ना सिर्फ पाकिस्तान के बट अमेरिका के भी हो गए हैं, पर खैर हम इनको अपने पास से तो जान ही देंगे, हम इनको अपना ही समझेंगे। ये हैं जी डीन एक पार्डी स्कूल बॉस्टन यूनिवर्सिटी, जो बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी और ये स्कूल भी बड़ा मशहूर है, उसके डीन हैं। और इनकी एक और वजह शोहरत जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये वो जो फेमस IPCC जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसने नोबेल प्राइज़ जीता था, ये उस पर भी थे, तो इनको क्लाइमेट का बहुत पता है। आप सब मेरा ख्याल इनसे काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, पाकिस्तान में काफ़ी प्रेजेंटेशंस कर चुके हैं, दुनिया में भी कर चुके हैं। तो आदिल साहब वेलकम टू सोच विचार।
बहुत शुक्रिया नदीम, थैंक यू।
तो जी बताइए ये क्लाइमेट चेंज का क्या मसला है? ये कुछ लोग तो इसको बिल्कुल नहीं मानते पर लग तो रहा है कुछ है, हम तो बैठे हो बहुत गर्म फरवरी में, तो बताइए क्या है ये मसला?
पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये वाला मसला जो है इस पे बात करने के लिए आज प्रोग्राम किया। दूसरा ये कि आई एम वेरी ग्लैड कि आपने जो लफ्ज है वो सही इस्तेमाल किया, मीनिंग क्लाइमेट चेंज। एक मेरे ख्याल में हम जो क्लाइमेट चेंज पे काम करने वाले लोग हैं, हमसे हमाकत ये हुई कि हमने शुरू में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से इसको काफी जो है मशहूर कर दिया।
That's interesting. अच्छा।
हाँ, उसका फायदा तो ये था ना कि ग्लोबल वार्मिंग हर एक को समझ आ जाती थी कि जी दुनिया जो है वो गर्म हो जाएगी। नुकसान ये हुआ कि एक आम फहम उसका मफहूम ये बन गया कि शायद सिर्फ गर्म होने का नाम ही, मौसम के गर्म होने का नाम ही ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग तो एक जो है ना एक पॉपुलर टर्म थी। क्लाइमेट चेंज का मतलब बेसिकली ये है कि जो दुनिया की क्लाइमेट है, किसी एक जगह की नहीं, दुनिया की, हमारे सैयारे की, प्लैनेट की, वो उसकी तब्दीली जो है वो बहुत तेजी से हो रही है। और इसलिए हो रही है कि हम बहैसियत इंसान हमने अपनी हमारी कैपेबिलिटी टू चेंज द क्लाइमेट हैज गॉन वेरी अप है, और खुसूसन जो कार्बन हम जो पंप कर रहे हैं एनर्जी के हवाले से लेकिन दूसरे हवालों से भी, उसकी वजह से अब हमारी हरकतों की वजह से आप कहें कि दुनिया की जो माहौल है उसकी जो क्लाइमेट है वो बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। अब ये मुश्किल सी बात है लेकिन इसके आम फहम जो नतीजे हैं वो एक तो ये है कि प्लैनेट गर्म हो जाता है कि जिस वक्त गर्मी नहीं होनी चाहिए शायद ज्यादा गर्मी हो जाए। दूसरा ये कि जो हमारे समंदर और ओशंस हैं उसकी एक राइज, क्योंकि जो पोल्स पे जो आइस है जब वो पिघलती है तो उसकी वजह से ओशंस राइज हो जाते हैं। तीसरा जो एक्सट्रीम इवेंट्स, जिस तरह हमने पाकिस्तान में फ्लड्स देखे और हम पहले भी देखते थे, उसमें तब्दीली आ जाती है। तो इस किस्म के जो इसके असरात हैं वो इतने अहम इसलिए हैं कि अगर आप सोचें कि आपकी जिंदगी में मौसम की क्या अहमियत है, हम इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं लेकिन अगर आप सोचें कि कितनी अहमियत है और अगर वो रोज तब्दील होना शुरू हो जाए तो उसके कितने मसाइल हो सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर पे हो, चाहे वो एनर्जी पे हो, चाहे वो दूसरी जगह।
नहीं, हमारी फसलें, हमारा रहन सहन सब कुछ मौसम पे तो डिपेंड करता है, तो ये बहुत अहम चीज है। पर इस पे ये बताइए कि इसमें फिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं मानता कि क्लाइमेट चेंज हो रही है?
प्रेसिडेंट ट्रंप का तो मेरे ख्याल में इस पे भी और बाकी चीजों पे भी किसी को समझ नहीं आया क्यों मानते हैं और क्यों नहीं मानते, लेकिन बेसिकली मेरे ख्याल में वो सियासी मसला है। और सियासी मसला ये है कि अमेरिका में खुसूसन, बाकी दुनिया में बहुत कम, अमेरिका में खुसूसन ये एक तरह से राइट विंग लेफ्ट विंग मसला बन गया। और जो राइट विंग था उसने इस मसले को इस तरह उठा लिया कि जी ये क्लाइमेट जो है ये ह्यूमन इंड्यूस्ड नहीं है, मसला ये नहीं है कि मौसम तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा, साइंस में एक जरूर बहस है लेकिन अब वो एक वाजबी बहस है, एक वो प्रेफरल बहस है।
अच्छा।
और वो बहस ये है कि इसमें ह्यूमन एस्पेक्ट कितना है
कि मौसम खुद ब खुद बदलता रहता है कुदरती निजाम के तहत, तो इसमें हमारा और, इतना हाथ नहीं है, है?
हाँ, और वो है, वो ऐसा उसमें उसमें यकीनन एक सदाकत है, क्योंकि हम अगर हम अपने सैयारे की तारीख देखें तो आइस एज पहले भी आई है, ये कोई ऐसी अनहोनी या नई बात तो नहीं है कि मौसम जो है वो बहुत तब्दील हो जाए। अनहोनी बात यह है कि जिस स्पीड से तब्दील हो रहा है वो बहुत तेज है, और उसमें मसला ये है कि क्या वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है और या वो नेचुरल है। अगर तो वो नेचुरल है तो आप उसका सामना करें, अगर वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है तो फिर आपका जो है काम आ जाता है, खुसूसन नदीमुल हक का काम आ जाता है, क्योंकि फिर सवाल ये कि क्या हमारे पास कोई पॉलिसी लेवर ऐसा है।
पर ये बताइए साइंस इस पे क्या कह रही है, साइंस क्या कह रही है?
साइंस बड़ी सीधी है जी, साइंस बड़ी सीधी है, साइंस साइंस इज एज कंफर्म्ड एज ऑन एनी अदर थिंग कि ये हो रहा है। मैं आपको बहुत सारे इसमें हकायक दिए जा सकते हैं, लेकिन दो जो है बहुत मोटे किस्म के बताऊं। इस वक्त दुनिया भर में अगर कोई शख्स आपका ये पॉडकास्ट सुन रहा है जो 31 साल से कम उम्र है, कोई शख्स इस वक्त जो 31 साल से कम उम्र है, उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा साल नहीं देखा जो कूलर देन एवरेज।
अच्छा,
ये जरा इसको सोच ले,
31 साल से
31 साल जब
हर साल पिछले साल से ज्यादा गर्म रहा है, यानी कि
एवरेज से गर्म रहा है, एवरेज से गर्म रहा है, और 31 साल में एवरेज भी ऊपर जाती रही है, राइट? क्योंकि अगर सो 31 साल, अब ये डेटा जो है ये तो बड़ा बड़ा दबंग डेटा होता है। मैं आपको एक और डेटा देता हूँ, ये जो होता है ना कि जी कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं, मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो कहते हैं, और वो साइंस में तो मुझे नहीं मिलते। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है कि ये स्टडीज हर साल होती हैं, तो मेरे पास जो लेटेस्ट तो नहीं, मेरे पास जो इस वक्त फैक्ट्स हैं कि 1991 से लेके 2012 तक, राइट, 91 to 2012, 13,950 पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पर्चे छपे जर्नल्स में क्लाइमेट चेंज के बारे में, 91 से लेके 2012 तक 13,950 पर्चे छपे ऑन क्लाइमेट साइंस, जिसमें से सिर्फ 24 ऐसे हैं कि जिन्होंने किसी तरह क्लाइमेट को अपोज किया, रिजेक्ट किया कि क्लाइमेट चेंज हो रही। तो जब हम ये कहते हैं ना जी कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, तो लगता है ऐसा है कि जी वो आधे आधे, वो आधे आधे नहीं है। एक तरफ 13,950 में से सिर्फ 24
कह रहे हैं कि नहीं।
हाँ, आप बताइए कि इकोनॉमिक्स में तो शायद हो भी, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी क्या, किसी भी साइंस,
किसी भी सब्जेक्ट में इतनी ओवरवेलमिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होती।
हाँ, 24 तो आपको ग्रेविटी को भी ना मानने वाले मिल रहे हैं,
थोड़े बहुत तो होती है, 24 लोग तो बड़ा कुछ, मतलब 13,050 में से देखें डिनोमिनेटर भी देखें ना, बहुत जरूरी बात है।
सो साइंटिफिक सर्टेनिटी जो है वो इसमें बहुत बहुत मजबूत है, पॉलिसी सर्टेनिटी इसमें मजबूत नहीं है।
अच्छा, पॉलिसी में अब क्या है, क्या क्या हमारा जो अगेन इंटेलिजेंसिया का रिसर्च का क्या पेशकश है कि पॉलिसी में क्या करना चाहिए?
अच्छा, उसमें भी एक तब्दीली हुई है पॉलिसी में, मेरे ख्याल में शायद इसी वजह से कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि जब ये बात होनी शुरू हुई तो असली मसला जो था वो एनर्जी का था। बेसिक कल्प्रिट जिसको ठहराया गया वो एनर्जी और खसूसन पेट्रोलियम था, हाइड्रोकार्बन्स, गैस, पेट्रोल, फ्यूल्स, और हमारी जो तरक्की है पिछले 100 साल में वो हाइड्रोकार्बन डिपेंडेंट थी। आप बेसिकली जितनी एनर्जी पंप करते हैं एक सोसाइटी में वो एक कोरिलेशन उसका बिल्कुल सीधा था जीडीपी वगैरह के साथ। तो जब ये बात होनी शुरू हुई तो एक तरह से जिस तरह हमने इसको कसूरवार इतना ज्यादा बना दिया हाइड्रोकार्बन को कि पॉलिसी डायरेक्शन ये लगे कि जी इसका हल सिर्फ ये है कि आप एनर्जी इस्तेमाल करना कम कर दें। अगर आप एनर्जी इस्तेमाल करना कम करेंगे उसका इम्पैक्ट बराह रास्त होता है आपकी ग्रोथ पे, आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी पॉवर्टी एलिविएशन पे, उन तमाम चीजों पे जिसको आप पुश करते थे। मेरे ख्याल में सिंपलिस्टिक किस्म के आंसर का एक नतीजा ये हुआ कि एक दीवार खड़ी हो गई बिटवीन क्लाइमेट पुशर्स एंड क्लाइमेट डिनायर्स। तो वो नहीं थे लेकिन क्लाइमेट को वो इतना सीरियसली नहीं लेना चाहते थे, वो इसलिए नहीं लेना चाहते थे कि वो क्लाइमेट से उनको कोई मसला था, लेकिन जो पॉलिसी रिकमेंडेशन आ रही थी कि जी आप हाइड्रोकार्बन को यूज करना कम कर दो। और ये उस वक्त आई जिस वक्त हमारे पास हाइड्रोकार्बन की अल्टरनेटिव जो थे वो या बहुत कम थे या वो बहुत महंगे थे, राइट? सो सोलर हो या विंड हो या वेव हो उसकी जो कीमत थी वो कोल और ऑयल से 4, 5, 6, 7, 10 गुना होती थी। तो एक इस किस्म की पॉलिसी डिबेट बन गई जो आइडियोलॉजिकल हो गई, और उसमें बजाय सोल्यूशन ढूंढने के दोनों तरफ एक साइड हो गई, और हमारे जैसे जो ममालिक थे, पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्री थे, उनका मौकफ ये हो गया कि जी ये तुमने मसला किया, देखो एनर्जी तुम लोग इस्तेमाल करते थे अमीर मुल्क, अब इसको तुम हल करो, तुम हमें ये नहीं कह सकते कि हम अपनी एनर्जी कम कर दें क्योंकि आपने पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल की थी और उसकी वजह से
माहौल। हमारी बारी आई है तो अब गेम चेंज,
सीढ़ी हटा लो,
हमारी बारी आई तो गेम चेंज होगी,
हमारी बारी आई तो नीचे से आपको सीढ़ी ऊपर कर लोगे जी, तुसी तो ऐसे नहीं खेल। तो ये एक मेरे ख्याल में एक ला हासिल किस्म की पोलिटिकल डिबेट बन गई। तो एक साइंटिफिक डिबेट जो थी वो टर्न हुई इंटू अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी डिबेट, एंड दैट टर्न इंटू ए नियरली यूजलेस पोलिटिकल डिबेट। यूजलेस मैं उसको इसलिए कह रहा हूं कि उस इस सारे मसले में जो असली मसला था वो इग्नोर होना शुरू हो गया, और असली मसला ये था कि अगर माहौल तब्दील होता है, अगर क्लाइमेट चेंज होती है, तो उसका असर किस पे पड़ता है? उसका असर पड़ता है लाहौर में उस बच्चे को जिसको डेंगू हो सकता है, डेंगू का इससे एक तरह से ताल्लुक है जिसपे हम आ सकते हैं, उसका असर पड़ता है आपके उस किसान पे कि जिसके पास या तो फ्लड बढ़ जाते हैं क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होना तेज हो जाते हैं, या ड्राउट की वजह से जो तब्दील होता है, तो उसकी जो एक तरह से एक पैटर्न है जो सदियों से जिसके बेसिस पे वो काश्तकारी कर रहा वो पैटर्न दरम बरम हो जाता है। मसला किसको होता है? मसला आप होता है श्रिम्प फार्मर को बांग्लादेश के सुंदरबन। तो ये सारी बातें रह गई और वो उस पोलिटिकल डिबेट में कि तुमने तुम्हारा कसूर है कि मेरा कसूर है, हम एक तरह से फंस के रह गए। हमारा जैसा मुल्क, एक अगर मैं हल्की सी गुजारिश के, हमारा पाकिस्तान जो है, मेरा कई अब सालों से मौकफ यह है कि वी आर अ क्लाइमेटिकली डिफाइंड कंट्री ना, एक तरह से तो हर मुल्क क्लाइमेटिकली डिफाइंड है, लेकिन मेरे ख्याल में हम अमूमन ममालिक से ज्यादा क्लाइमेटिकली डिफाइंड है। और उसका मकसद ये है कि हमारा तो नाम ही जो है वो एक क्लाइमेट फिनोमिनन पे आया। ये जो इंडस रिवर है ये एक फिनोमिना ऐसा है जो अगर आपके पास एक तरफ हिमालय ना हो और दूसरी तरफ आपके पास ये मॉनसून का सीजन ना हो, तो ये दो बहुत बड़ी क्लाइमेटिक फोर्सेस है जिसको हम बरसात कहते हैं, मॉनसून, और दूसरा हिमालय। बरसात की जो हवा है वो ऊपर से आती है और बहुत सारा पानी एक ड्राई एरिया जो बेसिकली पाकिस्तान जनरली ड्राई एरिया, उस पर ठा करके एकदम दो एक महीने में बल्कि उससे भी कम में सारा का सारा फेंक, और उसकी वजह से एक सिस्टम बना जो जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर और हमारा कल्चर, ठीक है ना, सस्सी पुन्नू जो है
बिल्कुल
कोई वजह था कि वो
नहीं, खड़ा बिल्कुल था। सही, बिल्कुल सही। बट आदि सब ये आपने बात सब बड़ी अच्छी की, एंड आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। मुझे तो कम से कम कुछ थोड़ी सी आज समझ आई है जो पहले नहीं आई थी। पर मुझे एक बात बताइए कि इसमें जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो ग्लोबल है। एक मुल्क का पाकिस्तान बेचारा क्या कर सकता है? अगर बाकी मुल्क नहीं मानते तो क्या करेंगे? इसमें जो एक किस्म की जो एक हमें एक कन्ड्रम आ गया वो ये कि हमें तो आदत है अपनी मेहनत से इकट्ठे होके खाओ, एक इंडिविजुअलिज्म हमारे कल्चर में आ चुका है, पूरी दुनिया के कल्चर में आ चुका है, पर अब एक हमें इकट्ठे मिल के ग्लोबल सोल्यूशन चाहिए, और ग्लोबल सोल्यूशन बनती नहीं, जो आपने कहा है कि हम पोलिटिकल झगड़ों में पड़ चुके हैं और हम नहीं चाहते कि इस मसले को रिजॉल्व किया जाए, तो क्या इसको कैसे डील करेंगे?
अब असली मेरे ख्याल में गेम इधर ही फंसी हुई थी, वी कैन कम लेटर, क्योंकि मेरे ख्याल में गेम थोड़ी सी बेहतर हो गई है कुछ वजूहत से, लेकिन जो ये कलेक्टिव प्रॉब्लम का है, तो पहली चीज ये है कि इस ये मसला ग्लोबल इसलिए, जिसको हम कहते हैं ना ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल इसलिए है कि ये उन मसाइल में से है जिनका कोई ऐसा हल नहीं है जो एक मुल्क खुद ब खुद अकेले कर सके अपने, चाहे वो कितना ही ताकतवर। ये हमारे आज के दौर का मेरे ख्याल में खास फिनोमेना है कि वी आर नाउ कंफ्रंटेड विद अ फ्यू प्रॉब्लम्स जो इंडिविजुअली हल हो ही नहीं सकते,
बिल्कुल,
और उनमें से एक जो आर्कटिपिकल है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है।
मतलब हमें अल्लाह ने या कुदरत ने एक ऐसी चीज दे दी है जिसको हम सबको इकट्ठे मिल के लड़ना है, अकेले अकेले नहीं लड़ सकते, और आपस में दुश्मनियों के साथ नहीं हम गुजारा कर सकते।
हाँ, हाँ, और ये हमारा हमारे जो अहद है मेरे ख्याल में, हमारे अहद की ये एक नज़ीर आप कह लें कि हमारे पास 5-7 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी ग्लोबलाइजेशन, जिसको ये ट्रंप वगैरह इसी चीज़ का मेरे ख्याल में एक तरह से रिएक्शन है, उसमें क्लाइमेट चेंज है, उसमें ग्लोबल टेररिज्म है, उसमें आई वुड से कि ग्लोबल फाइनेंस है, कि अब हमने कुछ ऐसे प्रोसेस बना दिए हैं जो इंडिविजुअल एंटिटीज आर नो लॉन्गर केपेबल कि वो उस गेम से निकल के गए, नहीं कि हम मैं अपना बॉल ले जा रहा हूं, मैं अकेले खेलूं। अच्छा, क्लाइमेट चेंज का इसमें मसला ये है कि एक तरफ तो ये कि अमेरिका हो या चीन हो या भारत हो अब या पहले यूरोप हो, वो अकेले अगर कुछ करना चाहें तो ये मसला इतना बड़ा है कि वो जो मर्जी पॉलिसी कर ले वो अकेले इसको नहीं कर सकते। देखिए, आपकी गाड़ी के पीछे से जब कार्बन का मॉलिक्यूल निकलता है ना, सीओ उसका कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसके ऊपर झंडा नहीं लगा होता, वो झंडा नहीं होता कि मैं जी पाकिस्तान से आया हुआ मॉलिक्यूल हूँ और मैं कनाडा का हूँ और मैं अमरीका का हूँ। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल होता है, वो ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, एक ही किस्म की केमिस्ट्री करता है चाहे जहां मर्जी से आए। यकीनन अमरीका का इमिशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो उसको अकेले कर ले। तो एक तरफ तो ये कि इट वाज अ कलेक्टिव प्रॉब्लम दैट नीडेड कलेक्टिव आंसर्स। दूसरी तरफ जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे ममालिक हमारे जैसे, हालांकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की इमिशंस पहले ही इतनी कम थी, हम तो लोड शेडिंग कर करके मारे गए, तो अब हम और कितना उसको कम करेंगे। तो
देखिए, वो बात तो सही है, पर इसमें एक और भी प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए, हम सब की, अमेरिका की आप देखें, ट्रंप के साथ ही हो गया, हम सब की एक नीड है कि हम सब ने अपने जो पॉपुलेशन है उसको नौकरियां, उसको वेलफेयर, उसको वेल्थ, उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। उसके लिए आपने पहले भी कहा और बात बिल्कुल बजाय है, हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी का नाम है डेवलपमेंट, एनर्जी के बगैर तो नहीं बात बनती, ठीक है ना। और हमारे पास एनर्जी का जो अभी सबसे अच्छा सलूशन वो फॉसिल फ्यूल ही है। तो अब एक किस्म की जो आप बात कर रहे हैं, बात तो बिल्कुल बजाय है, उसके अंदर ये चाहिए कि हम सब अपने बच्चों का सोचें कि अगली जनरेशन का क्या बनेगा, उससे अगली जनरेशन। मुझे लग रहा है कि लोग इस वक्त अपने बच्चों का सोचने को तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि हम सब कुछ खा जाएं और आगे को देखी जाए।
नहीं, ये जरूर है, लेकिन लोग तो अपना भी सोचने को तैयार नहीं है। असली मसला ये है कि हम अपने कभी देखने, तो मसलन यू आर राइट कि हमें फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एनर्जी पॉलिसीज जो हैं वो प्रेजेंट ओरिएंटेड भी नहीं। मसलन एक मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताऊं, पाकिस्तान इज वन ऑफ द एनर्जी पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट, कि हमारी जो अपनी तवानाई की के वसाइल हैं वो दुनिया में से कम तरीन है। हमारे पास तेल भी बहुत ज्यादा नहीं है, गैस थी लेकिन उसको हमने जला दिया, बट वी आर एनर्जी पुअर। लेकिन हमारी जो एनर्जी यूज है, वी आर अमंग्स द मोस्ट एनर्जी वेस्टफुल पर कैपिटा कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ये नहीं कि हम एनर्जी इस्तेमाल बहुत करते हैं, कि हर यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए यूनिट ऑफ ग्रोथ हमें कितनी मिलती है, राइट। सो एक मियार ये होना चाहिए, होता है कि आपने अगर एक यूनिट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल की तो आपकी जीडीपी पे उसका बेनिफिट कितना
पड़ा, बिल्कुल सही,
राइट। सो वी आर, हमारी जो एनर्जी वेस्टफुलनेस है ना, वो तकरीबन सऊदी अरेबिया जैसी है।
ओह माय गॉड, रियली?
बिल्कुल। और उसकी वजह, और ये कोई समझाना मुश्किल नहीं है, आप कोई घर देख लें, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, हम सर्दी आती है, बिल्कुल पतली सी एक वो होगी हमारी खिड़की पे, राइट, और हीटर के सामने इस तरह बैठ जाएंगे उसके ऊपर, बजाय हम स्पेस को गर्म करने के, हमारी हर चीज में हमें अपनी एनर्जी वेस्टफुल नजर आती है। ये जो लोड शेडिंग है, एक तरह से आप कहेंगे कि ये अच्छा, लोड शेडिंग का तो मतलब ये है कि हम एनर्जी कम इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली दैट इज नॉट सो, क्योंकि जब लोड शेडिंग होती है तो आप या जनरेटर लगा देते हैं जो अमीर होता है, जो कम होता है वो यूपीएस लगा देता है, राइट। यूपीएस लगाने का मतलब क्या है? यूपीएस का ये है कि वही एनर्जी आप सिस्टम से ले रहे हैं उसको इनएफिशिएंटली स्टोर कर रहे हैं,
बिल्कुल सही,
एक डब्बे में डाल रहे हैं, उसके बाद उसको 100% नहीं यूज कर सकेंगे। सो कहने का मकसद, अच्छा, आपका बहुत सारी हर चीज हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हम एक तरफ से एनर्जी पुअर है, दूसरी तरफ से एनर्जी नेग्लिजेंट है। लेकिन कहने का असली मकसद ये है कि हम इसका जो है ना, जहां तक मसला है कि हम कार्बन का फुटप्रिंट कम करें, उसमें पाकिस्तान इतनी बड़ा कारकर्दगी कभी भी नहीं कर सकता, और ना ही किसी को हक है कि हमसे कहे कि हम करें। लेकिन मसला यह है कि अगर इसका इंपैक्ट पाकिस्तानी पे होना है तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस इंपैक्ट के लिए तैयार हो, राइट, एंड दैट इज वेयर वी हैव बीन नेग्लिजेंट। ये हमें कोई नहीं कह सकता कि जी ये मसला हमारी वजह से आया, ये तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस होगा।
नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, बट आप जो आपने बात बड़ी मजेदार कही है, जो बड़ी अच्छी बात है, और ये मैं भी फील करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें यहाँ जिन घरों में हम रहते हैं, यहाँ इंसुलेशन की वजह से या डबल ग्लेज विंडो की वजह से एनर्जी एफिशिएंसी इतनी है कि मेरा बिजली का बिल तकरीबन $100-150 महीने का आता है। पाकिस्तान में बिकॉज हमारी दीवारें तो मेरा ख्याल पोरो समय, तो हमेशा कहता हूँ ना, मैं पूरे लाहौर को ठंडा कर रहा हूँ या पूरे लाहौर को गर्म कर रहा हूँ, अपने कमरे को नहीं कर रहा। और मेरा बिजली का बिल आता है कोई तकरीबन $300-400 देने महीने का, ठीक है ना। तो वो तो एक किस्म के हम पूरी ज़ाया करें बिजली। हर किसी के घर में मैं देखता हूँ तो 10-10 एयर कंडीशनर लगे हुए, यहाँ एक एयर कंडीशनर हम पूरे घर चला लेते हैं।
ये इरेशनल थॉट है, ये जो है इसका क्लाइमेट से कम और रैशनैलिटी से ज्यादा ताल्लुक है। आप पाकिस्तान के अमीर से अमीर आदमी के पास चले जाए, घंटे में वो कहीं ना कहीं जो है ना रोना डालेगा कि यार ये एनर्जी जो है ना ये बड़ी महंगी, तेल की कीमत बड़ी ज्यादा महंगी होगी। अच्छा, उस जाहिर है क्योंकि लोगों पर असर पड़ता है, लेकिन समहाउ मुझे ये नहीं समझ आता कि वाई वी डू नॉट टेक द राइट स्टेप्स टू चेंज इट। मैं आपको जो सबसे मेरे ख्याल में अहमकाना जो मुझे लगता है, पाकिस्तान में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं गीजर। यहाँ तो गीजर कहते हैं ना बुढ़े आदमी को,
बिल्कुल।
लेकिन गीजर जो है एक बड़ी अजीब किस्म की चीज है। आपने एक डब्बा लगाया, मेटल का, घर से बाहर ठंडे तरीन इलाके में, जो भी ठंडा तरीन इलाका है आपके घर का, घर से बाहर, उसमें आपने लगाया, उसके नीचे आपने पैसे जलाए। आग जलाना यही है ना, आपने पैसे की आग लगा दी। अब उसके अंदर उसमें पानी गर्म किया और फिर एक मेटल की पाइप जो पूरे घर के इर्द गिर्द घूम रही है, उसमें वो गर्म पानी आया। आप गुस्ल खाने में नलका खोल के खड़े हुए हैं कि यार गर्म पानी कब आएगा, क्योंकि आपने पहले ठंडे पानी को गर्म किया, फिर उसको बाहर का दौरा कराया ताकि वो फिर ठंडा हो जाए, राइट। आप अगर दुनिया में दूसरी जगह देखें तो ये जो गीजर किस्म की डिवाइस होती है, वाटर हीटर, ये अमूमन घर के अंदर लगा, राइट। और उसकी एक वजह ये होती है कि ताकि जब आपने उसको गर्म कर लिया है तो उसको वापस ठंडा तो ना करें। अगर आपने बाहर ही लगाना है तो एक बिल्कुल वो फोम की हल्की सी उसके ऊपर जिस तरह आप समझे रजाई डाल दें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर हम इर्द गिर्द देखें तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन असली जो मसला है वो अगेन ये नहीं है कि हम कार्बन फुटप्रिंट कम करें। असली मसला ये है कि क्या हम तैयार हैं इसके जो इम्पैक्ट हैं उसके लिए। मैं बिल्कुल मोटी मोटी ये करवा रहा हूं, पिछला साल आपका 10वां लगातार साल था जिसमें सैलाब आया, 10th कंसेक्यूटिव ईयर। और पिछले 2-1 साल से अब ये इतना लगातार हो गया है कि जब गिलगित में आता है तो हम उसका अखबार में भी जिक्र नहीं करते, क्योंकि एक तरह से आदत पड़ गई। आपको आपने देखी होगी कि आप भी ट्विटर पे होते हैं, मैं भी कभी होता हूँ, बहुत हमें शौक होता है, मुझे भी है, कि हम खूबसूरत तस्वीरें पाकिस्तान के बारे में कि हमारा कितना खूबसूरत मुल्क है, और है। लेकिन एक तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, अताबाद लेक, राइट, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें होती हैं। अताबाद लेक इज अ क्लाइमेट डिजास्टर। अताबाद लेक को वहां होना ही नहीं चाहिए था जहां वो है। दिस वॉज अ लैंडस्लाइड,
बिल्कुल सही,
जिसकी वजह से ओवरनाइट एक लेक जो है वो आके बन गई। आपका 10वां साल है ऑफ रेगुलर फ्लड्स, आपका इन 10 में से 8 साल ऐसे हैं जिसमें आपके पास एक तरफ फ्लड था मुल्क में और दूसरी तरफ ड्राउट थी। इसमें से 4 साल ऐसे हैं जिसमें आपकी हीट वेव आई कराची में, जिसमें से कम से कम 1 साल ऐसा है कि वो ऑफ ग्लोबल कैलेमिटी प्रोपोर्शंस थी।
बिल्कुल सही,
राइट। सो ये जो इम्पैक्ट्स हैं इसकी हमें तैयारी जरूर करनी चाहिए।
पर आदिल साहब, दो बातें मैं आपसे पूछ, बल्कि 3 बातें। एक तो ये बताइए कि क्या ये सच है जो कई हमारे राइट विंग लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमारे पास सोलर पैनल्स आने वाले हैं, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आने वाली है जो कि हम कार्बन फुटप्रिंट को साफ़ कर लें, मतलब कार्बन जो ऊपर बैठा हुआ है एटमॉस्फेयर में उसको साफ़ कर लें, और तीसरी चीज़ इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो हम शायद इसको प्रॉब्लम को इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कॉन्कर कर लेंगे इन टाइम। क्या ये पॉसिबिलिटी है या वो वक्त निकल चुका है अब?
नहीं, पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन ये जाके बताएं बांग्लादेश में जो सुंदरबन के पास श्रिम्प फार्मर है उसको, क्योंकि उसके लिए तो मसला आ जाए। ये बताएं सदन पंजाब में जो आपका काश्तकार है,
सही,
वो तो 10 साल से बैठा हुआ है. बट कैन हैविंग सेड दैट आई एम एक्चुअली अ टेक्नोलॉजी ऑप्टिमिस्ट. मैं जो पहले जिक्र किया था ना कि मेरे ख्याल में कुछ तब्दीली एक खास आ गई है, उसमें से सबसे बड़ा पहलू ये है जिसका पाकिस्तान से बड़ा ताल्लुक है. सबसे बड़ा पहलू ये है कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो है वो कॉस्ट कंपेटिटिव हो गई. सो इस वक्त आपको दो चीजें हुई. एक ये हुई है कि आप खुसूसन विंड और खुसूसन सोलर, इनको आप गीगावाट प्रोपोर्शन पे लगा सकते. आज से 10 साल पहले आप इसको मेगावाट भी नहीं सोच सकते. ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आप सोचते थे हाँ यार छोटा सा मैं घर के ऊपर लगा दूं. राइट, अब जो है ममालिक जो है आपके यूएई में भी और स्पेन में भी और कैलिफोर्निया में भी वो और इंडिया में भी वो गीगावाट की बात कर रहे हैं. राइट, सो जब अभी इट्स नॉट इजी, लेकिन आप इस वक्त कॉस्ट कंपेटिटिवली ये सोच सकते हैं कि मैं गीगावाट की फैसिलिटी इन टेक्नोलॉजीज पे लगाऊंगा. जब आप वो करने लगे तो फिर आपकी जो प्लानिंग प्रोसेस है वो बदल जाता है. एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मैंने घर के छत पे लगानी है उससे एनर्जी चेंज लाना फर्क चीज है, और एक 100 मेगावाट और गीगावाट प्रोपोर्शन की टेक्नोलॉजी सोचना पड़ेगा. दूसरी तो एक प्रोपोर्शन चेंज हुई, दूसरी कॉस्ट चेंज हुई कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज इस वक्त जो है कोल और पेट्रोलियम के लगभग करीब करीब हो रही है और कई जगह उससे नीचे आ गई. सो यकीनन एक चेंज तो आई है, लेकिन दैट चेंज अलोन इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि इसमें दो बहुत अहम पहलू हैं. एक ये कि हमने बहुत से साल गवा दिए जिसमें जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो पहले ही बहुत ज्यादा हो गया. सो आवर एबिलिटी टू एड मोर हैज गॉन डाउन. और दूसरी चीज वो है जो आपने की थी, देखें आपके पास 7.5 तकरीबन 8 बिलियन लोगों का प्लेनेट है. जो गरीब मालिक हैं उनका हक है और हक होगा कि वो अपनी एनर्जी फुटप्रिंट को बढ़ाएंगे.
सही सही,
और वो हम उनसे नहीं छीन सकते, वो एनर्जी राइट्स का मसला.
अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए कि हमारे पास क्या पॉलिसी कार्बन टैक्स लगाना है, यानी कि जो भी, या पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, इनके अलावा कोई है, या कि हमें ग्लोबली एक किस्म की अग्रीमेंट पे आना पड़ेगा कि जी हर कोई एक कार्बन टैक्स लगाए या हर कोई तेल की कीमत बढ़ाए. इसके अलावा कोई सोल्यूशन है?
नहीं, अभी तक तो एक ख्याल यही रहा है कि इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबली इनइक्विटेबल होगा और एक एडवांटेज देगा कि अगर आपने टैक्स लगा दिया तो मुझे एडवांटेज मिल जाएगी. एक ये कन्वेंशनल विजडम था. इस कन्वेंशनल विजडम को पहले जर्मनी ने और फिर सबसे बड़े हद तक चाइना ने एक तरह से डिस्प्रूव तब कर दिया कि जब उन्होंने अपना एक शिफ्ट करने लग शुरू कर दिया टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस, फॉर एनर्जी सिक्योरिटी रीजंस, एंड उन्होंने बक कर दिया इस ट्रेंड को कि अगर हमारी कीमत ज्यादा होगी कार्बन की तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाएगी. एक तरह से तो उन्होंने उसको हल्का सा किया, लेकिन असली चीज इसमें दो हुई है. एक तो ये कि यू आर राइट कि जहां तक प्राइसिंग का ताल्लुक है, टैक्स हैज नॉट बीन अ फेवरेबल इंस्ट्रूमेंट, और टैक्स तभी फेवरेबल होगा अगर ग्लोबल लेवल पे हो, और उस पे अमरीका तो कई सालों से तैयार नहीं था और अब तो लगता है कि बिल्कुल ही तैयार नहीं. लेकिन एक टैक्स की दूसरी तरफ जो जहां जर्मनी और चाइना वगैरह ने और स्पेन ने और अब इंडिया ने और उससे पहले कोरिया ने एक तरह से ट्रेंड बक किया है, वो जो है वो इंसेंटिव साइड पे.
अच्छा,
कि दे हैव स्टार्टेड लुकिंग एंड हैव स्टार्टेड प्रूविंग कि क्योंकि एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट होती है सिक्योरिटी के लिए कि रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करना इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट. तो अगर आप सोचें, ये तकरीबन उसी किस्म की गेम है जो जापान ने खेली थी आफ्टर द एनर्जी क्राइसिस जो पहले 70 की थी. एंड जापान, बिकॉज उनके पास अपनी एनर्जी नहीं थी, दे वेंट न्यूक्लियर. राइट, दे वेंट न्यूक्लियर इन अ बिग वे कि हमने अपनी एनर्जी जो है पहले उसको इंडिपेंडेंट कर ली क्योंकि हम इस पे डिपेंड नहीं कर सकते. उसी तरह इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इन ममालिक ने रिन्यूएबल्स की तरफ उस किस्म से इन्वेस्टमेंट की, एंड व्हाट दे हैव स्टार्टेड डेमोंस्ट्रेटिंग इज कि क्योंकि एनर्जी इतनी फ्लक्चुएट करती है एज एन इकोनॉमिक एंटिटी, अगर आपके पास इंडिपेंडेंस हो और अगर आपके पास इतना कैश हो कि आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकें तो लॉन्ग टर्म उसके इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज्यादा.
अच्छा, एक और बात बताएं आप, इसके आखिर में आपसे ये पूछ लूं कि अब पाकिस्तान जैसा मुल्क, हम क्लाइमेट के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपनी प्रिपरेशन के, हम ठीक है, माना कि हम एक ऐसी सिचुएशन में जहां बड़ी चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते, कुदरत की तरफ से हमारे ऊपर कुछ आ रही है चीजें, हम क्या मोटी मोटी बातें करें जहां अपना दिफा तो कर सकें?
हमें दो तीन चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले जहां हम गेम बेसिकली हमने पूरी खेली है एंड वी हैव लॉस्ट आउट, बांग्लादेश फॉर एग्जांपल हैज प्लेड इट मैग्निफिसेंटली, वो ये है कि ये जो ग्लोबल डिस्कशंस हैं इसमें बहुत सारे फंड बनते हैं, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं जिनका मकसद ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको स्पेस दी जाए, पॉलिसी स्पेस दी जाए टू इन्वेस्ट इन क्लीनर टेक्नोलॉजी। और उनका बेसिक फॉर्मेट ये होता है कि जी जो भी आपकी कॉस्ट है लेट से कोल लगाने, अगर आप उसकी जगह क्लीन कोल लगाते हैं तो जो डिफरेंशियल है वो ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट आपको पे करे। लेकिन उसको अवेल करने के लिए यू हैव टू बी वेरी पॉलिसी सेवी योरसेल्फ। तो वो जो पहली ट्रांच थी उसमें बेसिकली वो सारा का सारा फंड तीन मुल्क जो है एसेंशियली तीन साढ़े तीन मुल्क ले गए, चाइना, इंडिया एंड देन साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, बिकॉज दे वर बिग इनफ एंड दे वर एडवांस्ड इनफ के वो जो इकोनॉमिक केस था, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा आपको प्रूफ देना होता है।
बिल्कुल सही।
कि जी मैं ये वाला लगाने लगा था, अब मैं ये लगाऊंगा, ये डिफरेंशियल है, इस तरह मैं इसको पूरा करूंगा। और वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो बेनिफिट था अपने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को दिया। दूसरी जो फेज है उसमें भी बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिसमें आई थिंक कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, मालदीव्स, जिन्होंने एक तरह से विक्टिमहुड जो है उन्होंने ये मेंटल बहुत अच्छी तरह संभाल लिया है कि हमारा नुकसान बहुत हो रहा है और ग्लोबल कम्युनिटी का फर्ज है कि इस नुकसान की कम से कम कुछ तलाफी करें, राइट? एंड दैट बिकम्स एन एनर्जी, यू नो, एक तरह से लीपफ्रॉग करने के लिए आपको कैपिटल मिल जाता है। तो एक गेम तो ये है जो हमने अच्छी नहीं खेली। दूसरी जो ज्यादा जरूरी है वो उसको जिसको इस्तेलाह में कहते हैं अडेप्टेशन, जो कार्बन कम करना है उसको कहते हैं मिटिगेशन, कि आप कार्बन को मिटिगेट करें। उस गेम में हमारा रोल इतना नहीं है। अडेप्टेशन ये है कि कौन सी ऐसी किस तरह आप अडेप्ट करेंगे कि माहौल जब तब्दील हो तो आपको कॉस्ट ना, दैट इज मेरी नजर में अडेप्टेशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। यू शो मी अ गुड अडेप्टेशन प्रोजेक्ट, आई विल शो यू अ गुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अडेप्टेशन कैसे होती है? देखिए, हम जब स्वेटर पहनते हैं ठंड में वो अडेप्ट करते हैं ना, ठंड हो गई हमने स्वेटर पहन, लेकिन स्वेटर खरीदने की भी तो आपके पास सकत होनी चाहिए। सो अगर आपका क्लाइमेट इम्पैक्ट ये है कि आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, यू आर गोइंग टू सी मोर फ्लड्स, देन द वे टू अडेप्ट इज थ्रू डिजास्टर प्रिपरेशन। देन अगर आपका क्लाइमेट का इम्पैक्ट ये है कि कराची में यू आर गोइंग टू सी हीट वेव आफ्टर हीट वेव आफ्टर हीट वेव, तो फिर आप इन्वेस्ट किस में करेंगे? फिर आप इन्वेस्ट करेंगे कराची को हीट वेव से प्रूफ करना। जो अच्छा, कैसे आप प्रूफ करेंगे हीट वेव से? आप कुछ छतरी तो नहीं लगा सकते। सो व्हाट यू विल हैव टू डू एज अ पॉलिसी मेजर इज के मैसिव मच मोर ग्रीनिंग ऑफ कराची, क्रिएट ग्रीन स्पेस इन कराची, क्रिएट शेड स्पेस इन कराची, क्रिएट वाटर एक्सेसिबिलिटी, डिहाइड्रेशन इन कराची। अब ये मैंने छोटी छोटी एग्जाम्पल दी है, लेकिन ये सारी वो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर गुड फॉर डेवलपमेंट।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
एज मैं जानता हूँ आपका जो इंटरेस्ट है ऑन अर्बन, या मेरा जो बिलीफ है कि हमें अपने अर्बन जो सिटीजन है उसके बारे में सोचना है, हियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स जो अर्बन स्पेस के लिए वैसे ही अच्छी हैं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल
सही। एंड हियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट होल्ड ऑफ दैट फाइनेंसर, नॉट एज कर्जा, नॉट एज यू नो डेवलपमेंट एड, बट एज हमारा हक, बिकॉज वी आर सफरिंग दीज फ्रॉम द फंड्स दैट हैव बीन क्रिएटेड।
यानी कि आदिल साहब, अगर मैं इसको समाप करूं इस तरह, आप मुझे बताइए एम आई राइट, इसको मैं इस तरह समाप करूं कि यस, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, जो आप कह रहे हैं बेहतर उसका नाम है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है जिसका इस वक्त हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर पूरी दुनिया को मिलके, ये शायद कुदरत की तरफ से हमें एक सिग्नल आया है कि हम सबको, ह्यूमैनिटी को इकट्ठा मिलके काम करना है और समझना है, इसको ठीक करना है, तो वो तो अपनी जगह एक जगह चलेगा वो काम। दूसरी जगह ये है कि हमें अपना दिफा करना है, तो पर हमने अपना दिफा करने के लिए भी दो चीज़ें समझने की ज़रूरी है। एक तो हमें क्लाइमेट चेंज को खुद समझना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ हमें जो ग्लोबली क्लाइमेट चेंज की डिबेट है उसमें हमें बहुत अच्छी तरह जम जाना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना, उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको हम सोचें कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और नंबर दो हम घर में अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी में क्लाइमेट को डालें और हम अपने समझ लें कि ये एक जो चेंज आ रहा है इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं कि फ्लड आएंगे, वार्मिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगी वगैरह वगैरह, और ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन, वो चीज़ें हमें अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी में डाल देनी चाहिए और हमें उसके लिए प्रिपेयर्डनेस तैयारी करनी चाहिए। ये क्या ख्याल है, ये अच्छी समरी होगी कि नहीं?
Brilliant.
इस तरीके से अगर हम सोचें, पर मसला ये है कि आदिल साहब हम किसी चीज़ में कैपेसिटी बनाते ही नहीं। जो आखिरी में मैं आपसे पूछूं कि हमने क्लाइमेट चेंज भी नहीं बनाई, फॉर एग्जांपल हमारा बहुत बड़ा मसला आ रहा है पानी का, इंडस वाटर ट्रीटी हमारे हाथ से निकली जा रही है और मुझे लग रहा है हमारे मुल्क में इस पर गौर ही नहीं कर रहा, कोई समझ ही नहीं रहा।
नहीं, ये आपने एक तो आपकी समरी बड़ी बहुत ब्रिलियंट,
थैंक यू।
दूसरा, आई एम ग्लैड कि यू हैव मेंशन्ड वाटर, क्योंकि जो सबसे बड़ी चेंज हुई है क्लाइमेट पॉलिसी वो ये कि पिछले 25-1 साल तक क्लाइमेट पॉलिसी एसेंशियली मेंट कार्बन पॉलिसी, कार्बन पॉलिसी एसेंशियली मेंट एनर्जी पॉलिसी, राइट? क्योंकि हम मिटिगेशन पर डिपेंड करें, फोकस करें। जब हम एडेप्टेशन पे जाते हैं तो क्लाइमेट पॉलिसी हैज एंड विल बिकम primarily water policy.
Interesting.
Primarily water policy. Why? अगर आप सोचेंगे क्लाइमेट के इंपैक्ट क्या थे, राइट? मुझे अगर हल्का सा सिर्फ इंग्लिश में बोलने दें इसमें कि what happens when climate changes? Water melts, glaciers.
ठीक.
Water rises, sea level. Water disappears, drought. Water falls from the sky like no one's business, extreme events. Right? So most of जो आपके ज्यादातर जो impacts हैं उनका ताल्लुक पानी से होता है, और ये जो हम बात आजकल सुनते हैं ना कि पानी का अहमियत बढ़ती गई और बहुत ज्यादा हो गई, उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज है, बिकॉज वॉटर इज द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज।
Fascinating. That's a whole new dimension जो आपने आगे पेश कर दी है कि we also have to treat water as a climate issue and we have to, तो यानी कि मैं तो बड़ा अब इस पर परेशान हो गया हूँ, because quite frankly it has a, मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसकी पहलू हैं जिसको बहुत हमें समझने की ज़रूरत है, और मेरा आपको सुन के मेरा बस चले तो मैं तो इसके लिए बाकायदा एक थिंक टैंक खोल दूँ कहीं,
पॉलिंग
कमीशन या कहीं, यू नो, इस काम पे करने के लिए।
ज़रूर, मैं सिर्फ एक, क्योंकि पॉजिटिव भी इस पे एक इसका एक पॉजिटिव पहलू ये है कि हेयर इज अ डेवलपमेंट इशू जिसमें हमारे पास एक तरह से एडवांटेज है। एडवांटेज ये नहीं है कि हमारे पास कोई बहुत बड़े वसाइल हैं, एडवांटेज ये है कि सडनली जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैं और वो क्लाइमेट प्रायोरिटीज हैं, दे आर लुकिंग अलाइक, राइट? सो आप इस ग्लोबल उस जो फ्लो है उसको आप वो एक तरह से रीइंफोर्स कर सकता है। द इफ हेयर इज कि अगर हमारी अपनी डेवलपमेंट थिंकिंग इतनी मजबूत हो कि वी कैन पुट टू द वर्ल्ड कि यार ये हमारा प्रोग्राम है, नाउ सपोर्ट दिस।
पर आदिल साहब, आखिर में आपसे पूछूं, हमारी डेवलपमेंट थिंकिंग तो सड़कों पे फंसी हुई है। हम तो सड़कें बनाई जा रहे हैं, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स और फ्लाईओवर्स हो रही है, और वो तो मतलब हम इस तरफ कब आएंगे?
आई थिंक दैट इज द मोमेंट टू एजुकेट, इसीलिए तो आपकी ये पॉडकास्ट इतनी जरूरी है। दिस इज द मोमेंट टू एजुकेट।
बिल्कुल सर। आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच, एज ऑलवेज ग्रेट प्लेजर।
थैंक यू,
ऑलवेज बीन वेरी वेरी लूसिड एंड एरुडाइट, एंड यू नो, माशाल्लाह, यू हैव अ वंडरफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स वेरी नाइसली एंड वेरी सक्सेंटली टू, मतलब बड़े अच्छे तरीके से लोग समझ सकते हैं। तो बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके, इंशाल्लाह आपको फिर तंग करूंगा किसी दिन, बट अभी
Anytime.
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।